का था, रूह वही रूप नया।
मोंटू मेरा कमरा देखोगे? हाँ, उसमें देखने का क्या है मोंटू, तो ये गेम खत्म कर। अशोक चिढ़ गया, मगर मैं सम्मोहित सा वही खेल छोड़कर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गया था। छोटा सा साफ सुथरा तरतीब से जमा कमरा, जमीन पर ही सोने के लिए बहुत नीचे तख्त पर गद्दा था, उस पर दो गाव तकिए और पास ही पढ़ने का डेस्क था, किताबें और ढेर सी किताबें। तुम्हें पढ़ने के अलावा क्या शौक है नीलांजना? कोर्स की किताबों के बाद मैगजीन्स, उसके बाद कोर्स की किताबें, पढ़ना ही। बोरिंग। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए आसानी से उपलब्ध है। मैंने पढ़ाई करने के लिए बहुत लड़ाई की है और आगे भी करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद इस गांव में है ही क्या, और बाहर भेजेगा कौन? बनियों की लड़कियां इस गांव में प्राइवेट बीए कर लें वही बहुत है। यहाँ की जाने कितनी अपनी जाति और दूसरी जाति की लड़कियों को जानती हूँ मैं, ट्वेल्थ में फर्स्ट आकर भी आगे कुछ नहीं कर पाती। शायद मैं पहला व्यक्ति था जिस पर वो अपनी भड़ास निकाल रही थी। नीलांजना, मैं हतप्रभ था, उसकी परिस्थितियों से दुख और जुनून से हमदर्दी हो रही थी। क्या नीलांजना नीलांजना करते हो मोंटू, शोकी जीजी कहता है मुझे। मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? दीदी कैसे कह दूं, दोस्त लगती हो तुम। हे भगवान मोंटू, क्या बहुत पिक्चर देखते हो। शोकी कह रहा था कि तुम एग्जाम में भी मम्मी पापा के साथ पिक्चर देखाते हो। आप मुझे मोंटू मत कहा करिए, शांतनु नाम है मेरा। मैं आप और तुम की उलझन में फंस जाता और वो मुस्कुराती रहती। फिर अगले ही दिन हम लोग मिलकर पिक्चर देखने गए। दरअसल गई तो नीलांजना अनिला शेहला थी, उनके साथ शोकी को एस्कॉर्ट बना के भेजा जा रहा था, तो साथ में मैं भी हो लिया मुकद्दर का सिकंदर। न जाने कितनी भूल भुलैया गलियों से होकर पहुंचने वाले उस बाबा आदम के ज़माने के और मुस्लिम बहुल कस्बे के एकमात्र पिक्चर हॉल में लेडीज़ बालकनी अलग थी। उसमें पर्दा लगा रहता था जो पिक्चर शुरू होने के साथ खुलता था और इंटरवल में बंद होकर फिर खुलता था। वहाँ ढेरों बुरके वालियाँ भरी रहती थी। हमें छोटे लड़के जान बड़ी लड़कियों के भाई समझ लेडीज़ में बैठने की परमिशन मिल गई थी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, पर शोकी आदी था। वह अपनी चाची ताइयों के साथ इस लेडीज़ में बैठकर खूब पिक्चर देख चुका था। वो ज़माना ही पिक्चरों का था, लोगों का इकलौता मनोरंजन, और उस कस्बे में पिक्चर देखने का चलन कुछ ज़्यादा ही था। मैं नीलांजना के पास ही बैठा था अपने किशोर मन की हलचलों के साथ। जब जब अमिताभ बच्चन राखी को मेम साहब बोलता, कुछ होने लगता था। अंत में तो बड़ी मुश्किल से एक नाक दबाकर सुबकी दबाई थी, पर नीला को पता चल गया था। हंसकर धीरे से पूछा, रो रहे हो क्या? मैंने तरह तरह से जताया था नीला को उन दो साल के दौरान कि नीलांजना मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और चाहे तो बड़े होकर मेरे प्यार में पड़ सकती हो, बस जरा इंतजार करो, बड़ा होकर मैं तुम्हारी सब समस्याओं का हल निकाल दूंगा। तुम पढ़ोगी बाहर रहकर, मेडिकल में जाना चाहती हो ना, मैं मदद करूंगा, मैं लड़ लूंगा बड़े पापा जी से। वो हंसती थी खूब खिलखिलाकर। एक बार उसके जन्मदिन पर बहुत हिम्मत करके थोड़ा रोमांटिक सा बर्थडे कार्ड भैया के सामान में से चुराया और उसके टेबल पर एक बर्थडे कार्ड रख दिया था। जब तक लैब में अकेली ट्राइटेशन की प्रैक्टिस कर रही थी, नीचे नाम ही नहीं लिखा डर के मारे। वह बहुत दिन उलझी थी, उसने अशोक से शिकायत भी की थी कि न जाने किसने, मुझे लगता है। अशोक समझ गया था गाँव कैसे उन लड़कों में तब तक यह चलन आया नहीं था। वह बार बार यह जताता रहा कि यह काम यहाँ के लोकल लड़कों का नहीं है। दो साल यूं ही बीत गए थे। मैं 10वीं में आ गया था और नीलांजना 12वीं में। हम और अच्छे दोस्त बन चुके थे। हल्की मूछें आने का मेरा बेसब्र इंतजार अब लगभग खत्म हो चला था। नीलांजना की समस्याएं अब ज्यादा साफ थी मेरे सामने। वह अपने प्रति मेरे पागलपन भरे आकर्षण पर हंसने की अब कभी कभी हल्की मुस्कुराहट देती थी। कई बार मैं जानबूझकर वह अपने प्रति मेरे पागलपन भरे आकर्षण पर हंसने की अब कभी कभी हल्की मुस्कुराहट देती थी। कई बार मैं जानबूझकर केमिस्ट्री लैब में अपने प्रैक्टिकल के बाद भी देर तक रुक जाता था और नीलांजना की क्लास में आने का इंतजार करता रहता था। सब कुछ बहुत ही आकर्षक था, नशीला था, पढ़ाई में जोश था। नीला को प्रभावित करने के लिए आखिर मुझे मेरिट में आना था और सबको मुझसे उम्मीदें थीं। अगर ऐसा होता तो उसी छोटे कस्बे के उसी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैं 5वां छात्र होता। उस स्कूल में कुछ खास बात थी, हमारे टीचर्स बहुत समर्पित अध्यापक थे, चाहे फिजिक्स के पांडे सर हों या केमिस्ट्री की सुशीला मैडम या बायोलॉजी के डेरकी सर। पढ़ना बोझिल नहीं लगा, उस पर नीलांजना को केंद्र बना चलता मेरा अवचेतन। अब भी हम तीनों पूरा बाजार पार कर गलियां घूम घाम कर अशोक के घर जाया करते थे टिफिन खाने। बस यहीं आकर वक्त की डोर को छिटकना था। पापा का ट्रांसफर हो गया और तुरंत हमें जाना पड़ा। मैं मेरिट में 8वां स्थान लाया, अखबार में उस बड़े शहर के नामी स्कूल का नाम आया, पर मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने उस कस्बे तक गया। शोकी के घर ठहरा, सब टीचर्स को धन्यवाद दिया। मेरी उम्मीद के विपरीत नीलांजना पीएमटी की तैयारी करने की जगह बीकॉम प्राइवेट का फॉर्म भर रही थी। नहीं नीला, तुमने बात नहीं की? की थी, थप्पड़ भी खाया, बहुत जिद भी की, अनशन भी किया। इस बार अशोक ने भी बहस की बड़े पापा से। पांडे सर ने आकर घर पर बात की कि मत कराओ कोचिंग, बाहर भेजकर यहीं रहकर हम पढ़ा देंगे, पर पीएमटी तो देने दो। बहुत उदास थी नीलांजना, मैं क्या करता आखिर? मोंटू, तू तो देगा पीएमटी राइट? हाँ दूंगा, हालांकि मेरी रुचि आईआईटी देने की थी, पर नीलांजना का आग्रह और आईआईटी लायक तैयारी की कमी की वजह से मैंने पीएमटी देना ही ठीक समझा। मेरा मोह छूटा नहीं उस कस्बे से। एक बार फिर पापा उसी कस्बे के पास के शहर में ट्रांसफर होकर आए थे, तब मैं पीएमटी की तैयारी कर रहा था अजमेर रहकर। पीएमटी देकर एक दिन के लिए मैं फिर वहां लौटा। नीलांजना का बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा था, अशोक ने भी मेडिकल की जगह कॉमर्स को चुना था। यार करना तो बिजनेस ही है, का तर्क देकर। उस दिन शाम के धुंधलके में हवेली की छत पर गवाक्षों की पड़ती टेढ़ी मेढ़ी छाया के नीचे मैंने पहली बार खुलकर उसे कहा था, नीलांजना क्या अब भी यह नहीं जान सकी मैं दीदी क्यों नहीं कह सका तुम्हें? पागल हो शांतनु तुम, टालो मत। तो क्या कहूँ इस बेवकूफी पर, आकर्षण था तुम्हारा, था? तब उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई थी। मैंने कस कर उसका हाथ पकड़ लिया था। ये जो मैं यहाँ लौट कर आता हूँ वो था कैसे हो गया? आकर्षण था, है और हमेशा रहेगा। मेरा बस चलता तो सबसे झगड़ कर अपने घर ले जाता, फिर हम साथ साथ पीएमटी देते। उसकी आंखें भर आई थी। मैंने कस कर अपनी आकार लेती देह के साधन्य में उस पूर्ण युवती को भर लिया था और स्वयं को पूर्ण पुरुष महसूस कर उसे क्षणिक सहारा देकर गर्वान्वित था। पर यह गर्व व्यर्थ था, क्षीण था, यह वह भी जानती थी। जिससे उसे सामना करना था वह कस्बाई समाज का रूढ़िवादी जड़ हिस्सा था, जिसमें लड़कियों की पढ़ाई की सीमा प्राइवेट बीए पर जाकर खत्म हो जाती थी। नीलांजना ने फिर भी एमकॉम किया। मेरा सिलेक्शन मेडिकल में हो चुका था। एक बार अशोक के हॉस्टल आने पर उसी से पता चला था कि एमकॉम का रिजल्ट आने से पहले ही उसकी शादी उस कस्बे के पास ही एक और छोटे कस्बे के रूढ़िवादी व्यापारी परिवार में हो गई है। लड़का स्वयं कुछ नहीं करता, 10वीं पास है, पिता की अथाह संपत्ति है और उस हवेली जैसी ही एक और हवेली में कैद है नीलांजना। उसमें नीलांजना स्थानांतरित कर दी गई हो जैसे। पर क्या यहाँ क्या ज्यादातर भारतीय कस्बों गावी गांवों की लड़कियों का यही हश्र होता है? एक कैद से निकलकर दूसरी कैद। अब जाकर बदलाव आया है शहरों में कि लड़कियां अकेले जाकर पढ़ाई और नौकरी बखूबी करती हैं, शादी को प्राथमिकता अपने कैरियर के बाद ही देती हैं। माता पिता भी स्वयं को नहीं थोपते उन पर, लेकिन पता नहीं कि कस्बों में आज क्या होता है, पर शहरों में बढ़ते गर्ल्स हॉस्टल यही संकेत देते हैं कि कस्बों गांवों की लड़कियों में भी बदलाव आया है। जो जरा पढ़ने में अच्छी होती हैं जरूर आगे बढ़ती हैं। नीलांजना, तुम्हें देर से जन्म लेना था। अशोक की शादी में उससे मिला था। भारी जरी के लहंगा चुन्नी में एक बच्ची को गोद में लिए नीलांजना के इस रूप से तादम में नहीं बिठा पा रहा था मैं। नाराज था मैं, पर किससे? उसी से जो इस व्यथा का शिकार था, इस समाज से, उस हटीले पिता से, ना जाने किससे, पर उसी से झगड़ पड़ा था मैं। मैं जो बुरी तरह आहत था। जल्दी पड़ी थी ना तुम्हें? मुझे विरोध किया था, मन किया था आत्महत्या कर लूं। हार मान ली तुम जैसी लड़की ने। क्या करती शांतनु, भाग जाती? कहां? तुम नहीं समझोगे, बड़े होते और मुझे संभालने लायक होते तो जरूर तुम्हारे पास आती। आगे क्या कहता मैं, कांप कर रह गया था उसकी आंखों के आहत भाव से। उसकी बच्ची अचानक गोद में बंधे बंधे रो पड़ी थी और वह भी भारी पलके लेकर मुड़ गई थी। अपने आप पर गुस्सा आया कि मैं भी क्या बात लेकर बैठा था। उसके बाद वह सब इतनी अजनबी लगा कि अशोक के रिसेप्शन तक नहीं रुक सका था मैं। आज सब कुछ बदल गया है, पर मेरा मन अब भी उसके बारे में जानने को उत्सुक है। नीलांजना, अशोक और मैं शादी की रौनकें छोड़कर होटल की लॉबी में आ जाते हैं। मैं सिगरेट सुलगाता हूँ, वह कहता है, डॉक्टर होकर सिगरेट? हाँ यार, डॉक्टर हूँ शायद इसीलिए। इतनी व्यस्तता है इस क्षेत्र में, तनाव भी कम नहीं। शादी की ना यार, मेरी ही बैचमेट है, हम दोनों ही भागे फिरते हैं, एक बेटा है, बोर्डिंग में पढ़ता है। तू नीलांजना के लिए पूछ रहा था ना? वह हारी नहीं मोंटू, आज वह एक सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कैसे? सुखद आश्चर्य में डूब कर पूछा था मैंने। बस बेटी के जरा बड़े होने के बाद वह अपने पति को जिद करके भोपाल ले गई थी, जहां उनके बिजनेस की एक ब्रांच थी। वहां जाकर सीए किया और बस सारी राहें अपने आप खुल गईं। उस जैसी टैलेंटेड लड़की हार कैसे मान लेती? एक बार मायके आने पर मिली थी और कहा था कि शांतनु से मिलो, तो कहना नीलांजना ने हार नहीं मानी, रास्ता बना ही लिया। सच दिल से खुश था मैं। एक मलाल जो वर्षों अचेतन में रहता आया था अचानक मिट गया। पर अब ससुराल वाले नाराज हैं? हाँ अशोक, पर किस किस को खुश किया जा सकता है? स्वयं को आहत करते रहकर भी फिर भी सब खुश नहीं हो पाते। मैंने ठंडी सांस ली। यह बात पते की तूने। नीलांजना का नंबर ले ले, कभी फोन पर ही बात कर लेना। हाँ, उस जीती हुई लड़की को बधाई देने का मेरा बहुत मन है यार। आज ही लौटकर बात करूँगा। खुली हवा अच्छी लग रही थी और न जाने क्या सोचकर सिगरेट बुझा दी मैंने। अभी आपने सुनी मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी वीरांगना। गाथा में इस कहानी को आपके लिए प्रस्तुत किया पूजा श्रीवास्तव ने।